शब्द श्री हिरण्यकशिपु वाच। श्री हिरण्यकशिपु ने कहा, बाले बालक रूप में जमराज एवं इस प्रकार प्रवदति दार्शनिक रूप में बोल रहा था, सर्वे समस्त विस्मित आश्चर्यचकित चेतसः हृदय वाले ज्ञानतयः संबंधिगण मेनिरे, उन्होंने सोचा सर्वम समस्त भौतिक वस्तुएं अनित्यम नाशवान अयथा अयथा उत्थितम दैनिक घटना से उदित। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हिरण्यकशिपु ने कहा, जब जमराज इस तरह छोटे से बालक के वेश में सुयज्ञ के मृत शरीर को घिरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर दंग थे। वे समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है, वह विद्यमान नहीं रह सकती। दोहराइए, हिरण्यकशिपु ने कहा, जब जमराज इस तरह छोटे से बालक के वेश में सुयज्ञ के मृत शरीर को घिरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर दंग थे। वे समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है, वह विद्यमान नहीं रह सकती। तात्पर्य, इसी की पुष्टि भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 18 नंबर श्लोक में की गई है। अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिण, शरीर तो नाशवान है किंतु शरीर के भीतर का आत्मा नित्य है। अतएव मानव समाज में ज्ञान में बढ़े चढ़े लोग का कर्तव्य है कि नित्य आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का अध्ययन करें और जीवन के असली उत्तरदायित्व को समझें तथा शरीर का पालन करने में ही मानव जीवन का अमूल्य समय को गंवा न दें। प्रत्येक मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि आत्मा किस तरह सुखी रह सकता है और वह सच्चिदानंद स्वरूप कहाँ प्राप्त कर सकता है। मानव प्राणी ऐसे विषय के लिए है, नाशवान शरीर की देखरेख में लीन रहने के लिए नहीं है, क्योंकि यह शरीर अवश्य बदलेगा। कोई नहीं जानता कि उसे पुनः मनुष्य शरीर कहाँ मिलेगा, इसी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य को देवता से लेकर एक कुत्ते के तक का शरीर प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में श्रील माधवाचार्य की टीका है, अहं ममाभिमानादि त्वयथो उत्थम नित्यकम महदादि यथो यथाय उत्थं च नित्या चापि यथोत्थितः अस्वतंत्रैव प्रकृतिः स्वतंत्र नित्य एव च यथार्थभूतश्च पर एक एव जनार्दन। केवल जनार्दन या भगवान ही सदा रहने वाले हैं, किंतु उनकी सृष्टि यह भौतिक जगत नाशवान है। अतएव ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक शक्ति द्वारा मोहित है और यह सोचने में लीन रहता है कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, यह भ्रम मोह में रहता है, उसे अपने आप को जनार्दन का एक अंश ही सोचना चाहिए और इस जगत में विशेषतया इस मनुष्य जीवन में उसका एकमात्र प्रयास यही होना चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाकर जनार्दन की संगति प्राप्त करें। श्री हिरण्यकशिपु उवाच, बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मित चेतस ज्ञान तयो मनिरे सर्वम अनित्यम अथ उत्थितम अथा उत्थितम। हिरण्यकशिपु ने कहा जब जमराज इस तरह छोटे से बालक के वेश में सुजज्ञ के मृत शरीर को घिरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर दंग थे। वे समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है, वह विद्यमान नहीं रह सकते। तो प्रभुपाद ने भी हमें सतर्क करा था कि हमें शारीरिक सुख के लिए लालायित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है ये नाशवान है। इस बात को हिरण्यकश्यप भी कह रहा, लेकिन फिर भी वो तपस्या आगे जाएगा, फिर क्या बनने के लिए, वो शरीर को अमर बनाने के लिए, वो शरीर फिर नाश नहीं होने देगा देने के लिए। लेकिन हमें पता है कि शरीर नाश होने वाला है, है? हमारे पास में तीन प्रकार के शरीर होते हैं। एक शरीर नाशवान होने वाला शरीर, इसमें बना हुआ पांच भूत से भूमि रब अनल वायु कंग है, और ये शरीर नाश तो होता सभी को पता है, ये पांच तत्वों में पांच जो तत्वों में बना हुआ ये पांचों तत्वों में मिल जाएंगे, अंत में शरीर नाश हो जाता है। लेकिन जिसकी चेतना संपूर्ण रूप में भगवान के श्री कृष्ण के चरण में नहीं लगा हुआ है, अंत समय में भगवान को स्मरण नहीं कर पाया, तो फिर और एक शरीर है जो शरीर इसको दूसरे शरीर में फिर ले जाता, फिर भौतिक शरीर में ले जाता, वो शरीर कौन सा, सूक्ष्म शरीर, वो है मन बुद्धि और अहंकार के साथ है? इन जीवन काल में जो जो इच्छा को हम पूर्ति नहीं कर पाए हैं, जीवात्मा जो भोगे इच्छा रखा है उसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि नाशवान नहीं है, इस प्रभुपाद ने प्रारंभ से ही कोट किए, अंत बंत में देहा नित्य सत्ता शरीर ना, शरीर नाश हो जाता है, कई श्लोक संख्या जो में कहा गया है, लेकिन आत्मा के विनाश नहीं होता है। देही नस्मिन तथा देहे कुमारम जो वनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र नमुह्यति। ये कुमार जौवन जरा ये गति किसका होता है, ये परिवर्तन शरीर का ही होता है, लेकिन आत्मा कैसा परिवर्तन नहीं होता है, जो धीर पुरुष इस रहस्य को जानते हैं। तो इसलिए इस शरीर की प्रति उनकी इतनी आसक्ति नहीं रहता है, लेकिन हम साधारणतः बद्ध अवस्था में शरीर को ही शरीर के बजिश को आपने आध्यात्मिक शरीर का कोई ज्ञान नहीं है तो फिर भौतिक शरीर के शरीर में ही आसक्त रहता है। तो इसी शरीर को ही वो कहता कि सब कुछ ये शरीर का ही देखभाल करना, बा इसी का पालन पोषण करना, पर उपज कहते कि शरीर का भौतिक शरीर का पालन पोषण में समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए, किसको, बदजी। लेकिन हम देखिए कि हमारे माने जो भौतिक इच्छा है तो फिर एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में हमको जाना पड़ता है, हैं? जैसे जैसे इच्छाएं हमारे मन में है, आत्मा तो अविनाशी है, तो इसलिए उसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसी इंद्रिय तृप्ति की भावना को लेकर फिर वो मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर इसको लेकर दूसरे शरीर में डाल देते हैं, दूसरे शरीर में लेकर और दूसरे माँ की गर्भ में फिर इसको प्रवेश करा देते हैं। लेकिन ऐसा एक शरीर है जिस शरीर के माध्यम से हम इस भौतिक जगत की बंधन से भी मुक्त होकर कहाँ जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण की सेवा भी कर सकते हैं। अथो श्री कृष्ण नामादि नवभेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुख ही जिवाद स्वयं एवं स्मृति आदम। प्रकृत में हमें इंद्रियों की जो भौतिक इंद्रियों के माध्यम से अथवा श्री कृष्ण नामादि नवभेद ग्राह्य इंद्रिय भगवान की सेवा ठीक ठीक से, क्योंकि भगवान ही आध्यात्मिक है, हम भी आध्यात्मिक, हमारा भी जो आध्यात्मिक शरीर माध्यम से ही भगवान की सेवा की जाती है। हमारा नित्य शरीर, हमारे पास में एक नित्य शरीर भी है, क्योंकि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण की नित्य सेवक है, नित्य दास है, यही हमारा असली स्वरूप है, हम कृष्ण के नित्य दास है। लेकिन इस शरीर में हम सोच रहे हैं कि हम किसके दास हैं, हम इंद्रियों की दास है, शरीर का ही दास, शरीर को ही भरण पोषण करना, खाना पीना अच्छा, इसको सुरक्षा में रखना, यही हमारा कर्तव्य समझ रहे हैं। लेकिन प्रकृत में जीवा जीव का जो कर्तव्य है, ऋषि के है ना, ऋषि के सर सेवनम भक्ति रुचते, भक्ति इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषि के, इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन कहते हैं कि भगवान इस प्रकार भगवान के शरीर नित्य है, सच्चिदानंदमय है, तो हमारा शरीर भी प्रकृति में सच्चिदानंदमय है। जैसे हम ही जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, तो जीवात्मा की जो नित्य शरीर और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो सच्चिदानंद शरीर, प्रत्येक मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि आत्मा किस तरह सुखी रह सकता है और वह उस सच्चिदानंद स्वरूप को कहाँ प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है, इसी का अन्वेषण करना इसकी कर्तव्य है। जानना चाहिए कि मैं इस भौतिक शरीर नहीं हूँ, पांचभूत से बना हुआ शरीर नहीं हूँ। हम देख रहे हैं सभी का शरीर पांचभूत से बना हुआ शरीर नष्ट हो जाता है, राम नाम सत्य कहकर इसको लेके जाते हैं लोग, हम देखे हैं इसको, देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रैक्टिकली। तो ये भी हमको जानना चाहिए कि हमारे भी शरीर एक दिन नाशवान हो जाएगा। तो भगवान फिर कहते थे जो आत्मा का विनाश नहीं होता, फिर शरीर का विनाश के साथ तो आत्मा विनाश नहीं होता, फिर आत्मा क्या होता है, आत्मा की गति क्या होता है, जानना चाहिए। यदि हमारे मन में भौतिक इच्छाएं हैं तो फिर उसी भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए मन बुद्धि अहंकार के बाद दूसरे भौतिक शरीर प्राप्त कर लेते, लेकिन ये भौतिक शरीर तो बार बार ऐसा ही नाश होते जाएगा, बार बार ऐसा ही जन्म चक्र में भटकते रहेगा, जाता सही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु से, जब तक भौतिक इच्छा है ये घूमते रहेगा। लेकिन जब हमारे मन में भौतिक इच्छाएं दूर होकर संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में तल्लीन रहने के लिए भावना आती है, तो फिर हम हमारा नित्य स्वरूप के खोज करते, प्रकृति में मैं कौन हूं, यहीं से आध्यात्मिक जीवन शुरुआत होती है। सनातन को समय ने जिज्ञासा की, किनको, चैतन्य महाप्रभु, ग्राम व्यवहारे पंडित करिमानी ताई सत्य, नहीं ताई सत्यवानी, मैं इसको सत्य मानता हूं कि ग्राम्य व्यवहार में लोग मुझे बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। किनको, क्यों, सनातन गोस्वामी हम जैसे ऐसे मूर्ख नहीं थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़ा पंडित थे, संस्कृत के स्कॉलर तो थे ही, लेकिन इसके अला और कई लैंग्वेज वो जानते थे, बहुत लैंग्वेज उनको आता था, लिखना बोलना, और प्रधानमंत्री थे हुसैन शाह की दरबार में, बंग विहार उड़ीसा के प्रधानमंत्री थे, तो विशारण में बहुत कुछ जानते थे नॉलेज। लेकिन जो महाप्रभु को मिले बनारस में, तो उन्होंने कहते कि क्या करें, ग्राम व्यवहार है पंडित पंडित करी मानी, ग्राम व्यवहार में लोग मुझे बड़ा पंडित समझते हैं, कहते ताई सत्य मानी, ये मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन मैं इतने बड़े मूर्ख हूं कि के आमा के आमी के ने आमाय जारे तापत्र है, यह नहीं जानी के मने ही तो है, मेरे को ये पता नहीं कि मैं कौन हूं, और किसी लिए मुझे किताब क्लेश भोग रहा है, मुझे भोगना पड़ता है आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक दूसरे प्राणियों के माध्यम में कष्ट मुझे मिलता है, स्वयं अपना मन इंद्रिय की मुझे सताते हैं, और दूसरे देवताओं बा आदि दैविक शक्ति जो देवताओं की द्वारा से भी कुछ प्रकृति द्वारा भी कष्ट हमको मिलता है, तो क्यों हमको भोगना पड़ता है, तो मैं इसको नहीं जानता, ये रहस्य को नहीं जानता हूं, तो मेरे पांडित्य का क्या फायदा है, ये तथाकथित लौकिक पांडित्य में मेरा कोई लाभ नहीं है, यह हमें नहीं जानी के मने हित है, मेरा हित कैसे हो सकता है, यदि मैं इसको नहीं जानता मैं कौन हूं और मुझे किस लिए किताब क्लेश भोगना पड़ता है, तो इसलिए हे प्रभु मैं आपके चरण कमल को आश्रय दिया हूं, और आप मुझे पता ही है मेरे अज्ञान की मेरे को दूर कीजिए। सनातन गोस्वामी आदर्श निवार है, शिष्य को कैसे जाकर गुरु के पास में दैन्यता से नम्रता से प्रार्थना करना चाहिए, एक उत्तम शिष्य की भूमिका निभाते हुए सनातन गोस्वामी आदर्श, ये संबंध आचार्य कौन, सनातन गोस्वामी संबंध विग्रह है मदन मोहन, और इसलिए संबंध आचार्य हमारा संबंध कैसे जोड़ना है भगवान के साथ आदर्श सिखा रहे, कि सदगुरु के चरण में जाकर तत्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न है ना सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। जो तत्वदर्शी गुरु हैं या महात्मा संत है उनके पास में जाकर प्रणाम और सेवा के साथ उनसे नम्रता से विनम्रता से जिज्ञासा करना चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी ने जिज्ञासा की कि मैं कौन हूँ ये मुझे बताए, मैं तो सब पता लगे कि मैं शरीर नहीं हुई बात को हिरण्यकशिपु को भी पता, हिरण्यकशिपु भी प्रवचन कर रहा है लेकिन मैं हूँ कौन और किसी लिए कष्ट भोगना चाहता मन पड़ता है। तो इसलिए हमारा ये शरीर भौतिक शरीर जो पांच भौतिक शरीर है बद्ध अवस्था में हम सोचते कि यही हमारा असली स्वरूप है। हमारा जो नाम दी जाती है कुछ नाम आप माता पिता दे दिए आपके शरीर के साथ, ये नाम किसका होता है? शरीर का ही होता है, है? लेकिन आपके एक नित्य नाम भी है जो नाम कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये भौतिक दुनिया की जो समय है थोड़ा सा हम यदि एक जीवन का जो बिताते धरो 100 साल भी एक मनुष्य का जीवन, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की नए जगत की काउंट के अनुसार ये समय का कितना अवधि है, है? एक सेकंड भी होगा कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर रहकर हम ये शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसलिए ये शरीर के प्रति आसक्ति छुड़ाने के लिए हम प्रयास करना चाहिए, सदगुरु के पास में जाकर विनम्रता से जिज्ञासा करना चाहिए। जो तत्वदर्शी गुरु है या तत्व के दर्शन किया है तो वो आपको बताएगा प्रकृति में आप कौन है। जैसे मैं आप लोगों ने बताया किसको? सनातन गोस्वामी को, कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। जीवात्मा कृष्ण की तटस्था शक्ति है, भगवान की तीन शक्ति हैं अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थ। अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में वह कार्य करती, बहिरंग शक्ति भौतिक प्रकृति है भौतिक जगत में, और जीवात्मा क्या होता है? तटस्थ शक्ति। ये कभी कभी बहिरंग शक्ति के अंदर में आकर इंद्रिय भोग में लग जाता है और कभी कभी अंतरंग शक्ति में आकर भगवान की भक्ति सेवापरायण हो जाता है। जो महात्मा लोग है इसलिए कहते हैं भगवान महात्मा नंस्तु पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य मानस ज्ञानत्वामांग भूतादि अव्ययम्। जो महात्मा जन होते हैं संत जन होते हैं ये लोग भी इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मेरी अंतरंग शक्ति को आश्रय करके रहते हैं, इसलिए अनन्य चित्त में मेरी भजन परायण होते हैं, मेरी सेवा में तल्लीन रहते हैं। तो इसी प्रकार जो हमें पता लगा कि हम एक भौतिक शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, ये भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों ही टेम्पररी है। ये दोनों के परे हमारे पास में एक आध्यात्मिक शरीर है जिस शरीर से हम भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा नित्य धाम में गोलोक में करते थे और करेंगे, उसी शरीर में फिर करेंगे। वही नंद तनुज किंकरंग पतितंग मांग विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। मैं हूं उनका किंकर, किनका किंकर? नंद तनुज कृष्ण की नित्य दास हूं, किसी ना किसी कारण से मैं भवसागर में गिर गया हूं, इसलिए कृपा करके फिर मुझे भवसागर से उद्धार करके आपके चरण के दास बना लीजिए, फिर मुझे सेवा अधिकार प्रदान कीजिए। आप उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए हमारा नित्य स्वरूप क्या है, नित्य से हमारा जो क्या है उसको जानना ये जीवात्मा की कर्तव्य है। जीवात्मा उसको पहचाने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को। प्रभु कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा की कर्तव्य है कि वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जाने और वो सच्चिदानंद भगवान की सेवा में इस शरीर ने स्वयं जोड़ जाए। तो इसलिए कैसे हम जानेंगे? अभी तो बद्ध जीव है तो हमारा स्वरूप कैसे पता लगे? कौन बताएगा? गुरु बताएंगे, सदगुरु हमको बताएंगे कि आप कैसे क्या सेवा है। क्योंकि सदगुरु हमारी स्थिति को जानते हुए तो हमको स्टेप बाय स्टेप उस स्थिति को लेने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने ये मार्ग दिया है हमारे संस्था में कि कैसे उस स्तर को हम प्राप्त करेंगे। प्रारंभ से हमारे पास में इतने सारे अनर्थ भरे हुए हैं और ये अनर्थों को नष्ट करने के लिए हमें आस्ते आस्ते श्रवण से ही प्रारंभ करना चाहिए। आध्यात्मिक साधन कहाँ से शुभारंभ होता है? श्रवण से है। श्रवण से ही प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न होय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये जो कृष्ण जो कृष्ण के चरण में प्रेम बा कृष्ण की जो सेवा करना, ये नित्य स्वभाव है जीवात्मा का है। लेकिन जो शुद्ध भाव से हम इसको श्रवण कीर्तन करेंगे भगवान के बारे में, पदवस्था में गिरे हुए हैं, लेकिन भगवान के बारे में नित्य श्रवण करने से श्रवण आदि शुद्ध चित्ते हैं करे उदय, फिर आस्ते 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 भगवान के प्रति जो सेवा करने की भावना, हमारा जो आदि स्वरूप जो मूल स्वरूप जिस रूप में हम भगवान की सेवा में तल्लीन थे, वो हमारे सामने प्रकट होगा। आस्ते आस्ते हमको पता लगेगा हमारा असली कर्तव्य क्या है, कि कौन सा सेवा हम प्रत्येक जीवात्मा की एक स्वतस्फूर्त आकर्षण है, किसके प्रति? कृष्ण के प्रति, कृष्ण की सेवा के प्रति। लेकिन किसी कारण से थोड़ा दिन के लिए वो कवर हो चुका है, लेकिन कवर फिर हट सकता है यदि हम शुद्ध भाव से श्रवण कीर्तन करेंगे। इसलिए भक्ति प्रारंभ होती यहीं से, कहाँ से? श्रवण से, साधु के संग, पहले गुरु पदाश्रय है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, और कृष्ण प्रेम उपजाए तेनो मुख्य अंग, यही भी मुख्य अंग है भगवान के चरण में प्रेम को प्राप्त कराने तक, यही मुख्य अंग है। कौन सा? साधु संग ही। जितने महाप्रभु कहे सनातन गोस्वामी को कि कृष्ण भक्ति प्रारंभ होती है साधु संघ से, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ। हम कहते हैं श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगा? पहले साधु के मिलोगे तभी तो श्रद्धा उत्पन्न होगा, फिर दोबारा साधु, फिर जो सदगुरु को प्राप्त करते फिर तो भक्ति का प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए महाप्रभु कहते कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ, जन्म मूल ही से, और वही साधु संघ से, साधु से श्रवण करते 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 साधु संघ से साधु की सेवा करते करते फिर कहां तक पहुंचोगे? कृष्ण प्रेम भी प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण प्रेम उपजाए तीनों मुख्य अंग, यही मुख्य अंग है। इसलिए हम सदगुरु स्वीकार करते साधु के पास में आए, साधु हमें हमारा स्थिति को देखकर, साधु कौन होता है? ये स्पिरिचुअल डॉक्टर, हम बीमारी आदमी तो हमें कैसे ट्रीटमेंट चाहिए उनको पता है, इसलिए साधु के पास में जाकर बड़े दैन्यता से हमारा हृदय के जो अनर्थों को खोलना चाहिए, किसको पास में? साधु के पास में। यदि आपका अनर्थों को ठीक ठीक से नहीं खोलोगे, कुछ छुपा के रखना चाहोगे, कुछ का इधर उधर रखना चाहोगे, और कुछ मना अच्छा कुछ उनको दिखाने के लिए और कुछ बोलोगे, जब डॉक्टर के पास में जाओगे और आपका क्या बीमारी उसको ठीक से नहीं बताओगे, तो जो मेडिसिन वो जैसा देगा फिर आपका काम करने वाला नहीं। तो इस प्रकार ही बद्धजीव भी एक आध्यात्मिक डॉक्टर सदगुरु के पास में जाकर उनके पास में चरण कमल में खोलता है अपने हृदय क्या है, मेरे पास में क्या बीमारियां हैं, सो बोलना चाहिए, और उनकी बीमारी को देखकर फिर वो इसको मेडिसिन देते हैं। प्राय इस कलयुग में सभी बीमारियों के लिए एक तो जनरल टॉनिक है, कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए डॉक्टर बताता है, इसलिए इसको भी आपको बता गया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हैं? इसलिए कहे कि चारों चीज नहीं क्या, चारों चीज को त्यागना है? कुछ पथी कहता है डॉक्टर, मेडिसिन जो डॉक्टर पास जाओगे आयुर्वेदिक डॉक्टर तो कहेगा। तो इसलिए आपको नशा नहीं करना, ज्वासा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, और अवैध संघ से मुक्त रहना। इसके बाद फिर गुरु आपको माला दिया ताकि चार नियम पालन करोगे फिर ठीक है, माला लो और हरे कृष्ण जब प्रारंभ करो, श्रवण कीर्तन प्रारंभ करो, और नित्य भागवत श्रवण करो, है। इसलिए साधना के कई अंग बताए रूप गोस्वामी ने, लेकिन कहे कि मुख्य पांच है, पांच अंग को, ये पांच को फॉलो करो। कौन सा है? ब्रजवास है, मथुरावास, विग्रहों की अर्चना, हरे कृष्ण मंत्र की जप और कीर्तन, और भागवत के नित्य श्रवण, और भक्तों की सेवा है। ये मेडिसिन पहले ये इसको पालन करते रहोगे, आस्ते 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 जो कवरिंग सब दूर होगा, जो हमारा कवरिंग है सब लगा हुआ, जिसके कारण से हम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, तो ये हटेगा, आस्ते आस्ते हटेगा। कवरिंग कैसे हटेगा? तो ये पालन करते रहोगे। बल मेडिसिन मैंने कहा गया चारण नियम पालन करना, हरिकृष्ण मंत्र जब प्रारंभ करना है, और मथुरा वास, मथुरा में रहना। कहाँ रहना? मथुरा, इधर उधर नहीं, दिल्ली में नहीं रहना है। तो मथुरा किसको कहते हैं? जहां पर भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए हैं, भगवान जन्म लिए हैं, इसलिए मथुरा, मथुरा को श्रेष्ठ माना गया। वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ इसको कहा गया मथुरा। यदि इस भौतिक जगत में भी मथुरा भूमि हम देखते मथुरा मंडल, लेकिन क्योंकि क्योंकि भगवान ने आकर इस इगड़ा के लिए ही मथुरा में जन्म लिया, इसलिए भगवान रूप गोस्वामी कहे कि मथुरा जनित बरा मधु, नहीं सॉरी, वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी, मधुपुरी मथुरा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान ने वहां पर जन्म लिए। तो उसी प्रकार जहां पर इस्कन के केंद्र होता है, जो मंदिर होता है, तो वहां पर भी भगवान श्री विग्रह के रूप में पूजा प्राप्त करते हैं, भगवान वहां पर आविर्भाव हुए हैं। तो इसलिए आचार्य लोग ने कहे कि मथुरा तो नित्य जो मथुरा मंडल है, मथुरा यूपी डिस्ट्रिक्ट में हो तो मथुरा है, लेकिन जहां पर भगवान अर्चा विग्रह के रूप में पूजा प्राप्त करते हैं वो भी क्या, वो भी मथुरा है। उस मंदिर के परिवेश में रहना वो भी मथुरा वास है श्री विग्रह की, जहां पर स्वयं नित्य पूजा चलता है, तो वहां पर रहकर भक्ति करना वही मथुरा वास है। और यहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र हो रहा है, जप रहे हो आप, कीर्तन कर रहे हो, नित्य भागवत से भया, प्रत्येक दिन भागवत ग्रंथ भागवत की सुनना और व्यक्ति व्यक्ति भागवत की सेवा करना, जब मौका मिलता तो किसी व्यक्ति भागवत की सेवा करना। और भक्तों की संग, तो कहा हरे कृष्ण मंत्र के जप और कीर्तन कहा गया पहले। इसलिए पंच महासाधन को सामने रखकर ही आपको मेडिसिन दिए। कौन कौन मेडिसिन दिए? रूपा जी ने परफेक्ट मेडिसिन दिए, रूप गोस्वामी के जो अनुजाई है श्रील प्रभुपाद, तो उन्होंने हमें इसी देखिए कि रूप गोस्वामी ने जैसे कहा है परंपरा से जो विधि है, तो हमको मथुरा के बास भी दिए, मथुरा में रहने का सुजोग, और हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन, नित्य भागवत को श्रवण करना, और विग्रह का अर्चना, और भक्त सेवा, भक्त संघ, भक्त सेवा, ये सब प्रदान किया गया। यदि आप केवल प्रभुपाद की नीतियों को विधियों को ठीक ठीक से पालन करते जाओगे, तो फिर आप आस्ते आस्ते मेडिसिन खाते रहोगे, तो समय आने पर आपकी बीमारी आस्ते 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 ठीक होने लगेगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते कि उपदेशानंद के जो 8 नंबर श्लोक में सबसे सभी जितनी भी उपदेश है संसार में, जितनी भी कोई साधु से हम उपदेश ले सकते हैं, व कहीं भी शास्त्र साधु गुरु, ये समस्त उपदेशों की सार उन्होंने कहते कि तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यः क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नएत अखिलमिति उपदेश सारम। रूपानुग विष्णु है हम लोग, तो रूप गोस्वामी कहते कि सारे उपदेशों की, सभी उपदेशों के साथ इतना ही है क्या, सारे शास्त्र पढ़ के जो निचोड़ है इसमें जो सारा जो उपदेश है यही है क्या। श्लोक कहां से प्रारंभ है? कौन तन्नाम रूप चरित, भगवान के नाम गान करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, नित्य कीर्तन करना, और रूप चरित तब भगवान के रूप विग्रहों की अर्चना, और उनके चरित्र को सुनना, भागवत की कथा श्रवण, नित्य श्रवण करना, तन नाम रूप चरित सुकीर्तना, उसी कीर्तन करना, भगवान के नाम रूप गुण लीला कीर्तन, और स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, ये क्रमेण ये कान में प्रवेश करेगा, जो सुनो क्या, तो कीर्तन करोगे कहाँ जाएगा, सुनेगा, आप सुन रहे हो, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, आप लोग श्रवण कर रहे हैं ना, श्रवण कीर्तन, ये श्रवण कीर्तन चल रहा है, तो कान में प्रवेश करेगा, कान में प्रवेश करके कहाँ जाएगा, श्रुत्य क्रमेण रसना, रसना आप मैंने जीवा को उपयोग किया, जीवा से बोला फिर कान में प्रवेश किया, फिर यह हृदय में आएगा है, फिर अभद्र को सब नाश करेगा है। भागवत कथा ही तब अवतार धीर या काने यदि सुने बार बार, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद ने अपने भजन लिखा जाकर अमेरिका में पहुंचकर कहते कि भागवत कथा यही तब अवतार, यही आपके अवतार है साहित्य अवतार। कृष्ण सुधाम उपगते ज्ञान ने धर्म ज्ञानादि विषह कलो नष्ट तुषामेश पुराण अर्क अधुना उदित। ये उदय हुआ कौन सा भगवान के स्थान को पूर्ण करने के लिए, इस भागवत पुराण। इसलिए भागवत की जो कथा है ये भगवान के अवतार है। भागवत कथा ये तब अवतार धीर हया सुने यदि काने बार बार, बार बार यदि कान में धीर शांत होकर श्रवण करेगा तभी सुने बार बार। हृदय रे अभद्र सब खुंची बेतहार, तभी सब हृदय में जितनी अभद्र है ये सब दूर हो जाएंगे। भागवत में भी कहा कि नष्ट प्रायशो भद्र सब नहीं कहते हैं कई श्लोक भागवत में, से बहुत श्लोक है जो कहते कि ये श्रवण करने से भगवत कथा को डेली भगवत ने वैष्णव की संगति में श्रवण करने से ये अभद्र सब नष्ट हो जाते हैं। सतान प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा तज्ज सुनाद आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। कपिलदेव भी कहते हैं माता देवोति सत्संग में बैठकर जब भगवान की कथाओं को श्रवण करोगे आस्ते आस्ते ये अभद्र सब नष्ट हो जाएंगे। मम वीर्य संविदो भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा, ये रसायन है ये बहुषधि के समान कार्य करता है बद्ध जीव के अनर्थों को नष्ट करने के लिए। यदि सबसे पहले धीर है या यदि प्रकृति में श्रवण करेगा अटेंटिव हियरिंग बैठे हुए हैं लेकिन सब लोग सुन, लेकिन मन बैठता तो इधर मन कहीं घूम सकता है, मन कहीं भी घूम सकता है इधर उधर कहाँ भी जा सकता है, मन बहुत चंचल है। लेकिन धीर है या इसको सावधानी से श्रवण करना है, इसलिए ये अनर्थ में अनर्थ को जब तक यहीं से सुधारेंगे नहीं श्रवण से ही, यहीं से ढीला रह जाएगा तो फिर आगे कहाँ से बढ़ेंगे बढ़ेगा, पहले से ही इसी को सुधारना है इसको श्रवण अटेंटिव हियरिंग। इसलिए अनर्थ पांच जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं देते हैं, जो अनर्थ हैं पांच, सबसे पहला अनर्थ ये है। इसको चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको कहते लय। लय का अर्थ कीर्तन में इसको आनंद आता है, कीर्तन करें बहुत नाचेगा लेकिन बैठेगा जो भागवत का बैठ कर बैठ जाएगा पढ़ने के लिए क्या होगा है? कीर्तन कर सकता है लेकिन श्रवण नहीं कर पाएगा। श्रवण में बैठते ही किताब ले भागवत की क्लास में बैठ गया बाप किताब देखते ही वो नींद आ गया है, तो श्रवण नहीं करेगा तो कैसा है? तो इस कारण से उसको स्मरण नहीं होगा, जो श्रवण तो क्या बैठकर श्रवण नहीं कर पाएगा तो फिर कैसे वो स्मरण करेगा। कहते लय, इसका क्या कहते विक्षेप, विक्षेप किसको कहते हैं विक्षेप। चल रहा है हम बैठे हैं लेकिन माइंड ओवर कुछ काम कर रहा है, वो तो सो गया था लेकिन ये अभी माइंड ओवर कहीं घूम रहा है, बैठे क्लास में, क्लास तो बैठे लेकिन मन मन कहाँ घूम रहा है, मन और कहीं आपने काम पे लगा हुआ है, श्रवण कीर्तन में लग रहा है लेकिन मन और कहीं लगा घूम रहा है, मन यहाँ पर नहीं है। वो प्रयास करने पर मन नहीं जा, मन इसको नहीं सुन रहा, मन तो और कुछ चिंतन कर रहा है। और संक्षेप में तो इसकी बात कहते कि उन्होंने लय विक्षेप अप्रतिपत्ति, कोई प्रयास भी करता है सुनने के लिए और कीर्तन के लिए, वो बहुत बड़े बहुत प्रयास करने पर भी वो प्रयास करने पर भी नहीं हो पा रहा है। श्रवण में चलो सावधान से बैठा है इधर लेकिन सुना, लेकिन क्लास में जाता तो फिर बोल गया, उसके प्रारब्ध ऐसे ही पौधे से पड़ा हुआ है उसका स्मरण नहीं हो पा रहा है। प्रयास करने पर भी सुनने श्रवण कीर्तन करने पर भी कुछ स्मरण नहीं हो पा रहा। आगे कहते कि जो श्रवण कीर्तन करने के समय में वायलेंट हो जाता है, दूसरे के प्रति क्या करता है ईगो के कारण दूसरे के प्रति कभी कभी झगड़ा भी कर लेता है, किसके साथ मैंने फिजिकली कुछ फाइटिंग कर लेता है, एरोगेंट क्रोधित हो जाना, एरोगेंट होना डिवोशनल सर्विस समय मैंने सेवा के समय में ये अनर्थ है। उसके कहते कसाय, अब उसके आगे कहते कि वो रसास्वाद, रसास्वाद किसको कहते हैं भौतिक रस को आस्वादन कर रहा है कीर्तन में नृत्य, चाहे देख रहे कि बहुत बड़ा अच्छा कीर्तन कर रहा है लीडिंग कर रहा है लेकिन मौन भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, मौन और कुछ को प्रसन्न करने के लिए होगा है। किसी ने इतना नाच रहा ना, कोई इसकी कुछ कोई होगा मन जिनको साधारण अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स में रहता है, कोई रीडिंग कर रहा है लेकिन देख रहा है कि वो पार्टिकुलर लड़की जब आज आई तो कीर्तन में मैं आज रीडिंग करूंगा, ऐसे बाहर से गा रहा नाच रहा है लेकिन उसकी रोसा आस्वादन दूसरे से हो रहा है, वो भगवान प्रसन्न करने के लिए कीर्तन नहीं कर रहा है, इसको कीर्तन प्रसन्न करने के लिए कर रहा है कीर्तन किसी दूसरे व्यक्ति, कभी भी हम देखे कीर्तन भी लीडिंग करता है कोई धूमधाम से कहा दो चार जो नाचेंगे आगे बोला हाँ बहुत अच्छा बड़ा कीर्तन हो रहा है बहुत अच्छे से कीर्तन गाएगा बोले नाचो नाचो, लेकिन प्रकृति में कीर्तन हम किसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, किसकी कीर्तन के कीर्तन किसकी प्रसन्नता के लिए होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है। लेकिन जब भौतिक आस्वादन भौतिक रस के आस्वादन होता है तो फिर हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पहले सुधारें यहीं से, मेडिसिन तो लिए लेकिन इसको कैसे खाना ठीक से सीखें, सावधानी से श्रवण धीरा हया सुने यदि काने वारो वारो तब हृदय के अनर्थ नष्ट होंगे आस्ते 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 इसको समाप्त होंगे, तो इसलिए श्रवण साधक को यहीं से शुरुआत करना चाहिए, आज से जो सावधानी से हम श्रवण करेंगे बाप श्रवण करेंगे तो आस्ते आस्ते फिर स्मरण होगा, श्रवण दशा उसी तात्पर्य में इसी शोक की जो तन्नाम रूप चरित सुकीर्तनानु स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज मन को निवेश करना कहाँ कृष्ण के चरण में तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानु उनके अनुगामी जन के अनुसार मार्गानुसरण करना चाहिए, इस श्लोक की तात्पर्य प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा है कि किस प्रकार श्रवण दशा पहले श्रवण दशा फिर वरण दशा फिर स्मरण दशा, श्रवण करते हैं श्रवण कर जब ध्यान से श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे फिर स्मरण होगा, जब ये हम ध्यान से ये अनर्थों से बचकर जो अनर्थ में कहा पांच प्रकार ये अनर्थों से बचकर ठीक ठीक से श्रवण करेंगे फिर आस्ते आस्ते भगवान की स्मरण होने लगेगा, लेकिन जब हम भगवान की स्मरण होगा तो उसकी प्रभुपाद जी कहीं पांच अलग अलग स्तर है, अलग अलग कृष्ण स्मरण के पांच स्तर है, श्रुति अनुस्मृति ध्यान धारणा बस श्रुति धारणा ध्यान अनुस्मृति समाधि पांच स्तर है, तो पहले हम श्रवण करते हैं लेकिन कभी कभी स्मरण भगवान के होता है कभी कभी माया के भी स्मरण होता है चलता है से कॉम्पिटिशन कभी माया कभी कृष्ण कभी कृष्ण कभी माया है, और आस्ते आस्ते से बढ़ते हैं जो ध्यान के स्तर पर आते हैं तो ध्यान के स्तर पर भी फिर भी ध्यान करते हैं लेकिन कभी कभी फिर बीच में भी लिखे पाता है कभी इधर उधर भी मन जा सकता है, धारणा में भी और थोड़ा आगे बढ़ते इसे बढ़ते बढ़ते जो अंत में जो समाधि के स्तर पर व्यक्ति आता है तभी क्या होता है कृष्ण चिंतन में तल्लीन रह जाता है, फिर वो उसके बाह्य स्मरण संपूर्ण चले जाते हैं, वो फिर किसके स्मरण में रहता है 24 आवर्स कृष्ण के स्मरण में, जैसे ही कृष्ण के स्मरण में रहेगा तभी फिर उसकी आध्यात्मिक शरीर क्या है उसको पता लगेगा है, कृष्ण के जब 24 घंटे कृष्ण के स्मरण कर पाएगा नित्य स्मरण में समाधि के स्तर पर ही उसको अपने प्रकृत उसकी आध्यात्मिक शरीर के ही पता लगता है वो क्या है कौन है उसकी कर्तव्य क्या है, तो हम लोग कौन सा स्तर में पड़े हुए हुए अभी अनर्थ ही निवृत्ति नहीं हुआ है और कहाँ से समाधि पहुंचेंगे हमको स्वरूप तो पता लगेगा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि आध्यात्मिक शरीर जीव अपने स्वरूप को जानने के लिए तीन उपाय से जान सकता है, वो कौन सा चंद्रिका प्रेम राग भक्ति चंद्रिका में कहते कि तीन उपाय से जान सकता स्वरूप, चाहे सदगुरु यदि क्वालिफाइड है उत्तम वैष्णव है तो वो बता सकता है दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु किसी अन्य दूसरे महान परमहंस वैष्णव आपको बता सकता है, नहीं तो स्वयं कौन बताएगा कृष्ण बताएंगे हृदय में बैठे चैत्य गुरु वो बताएंगे आपका स्वरूप क्या है, तो ये समाधि स्तर पर कौन बताता आपको भगवान ही स्वयं आपको रिवील करते आप कौन हो परमात्मा रिवील कर देते आप हैं, और दूसरा जो दो जो है अभी इस कलयुग में ऐसे परमहंस गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रभुपाद जी जानते कि प्रभुपाद जी जानते थे लेकिन उन्होंने इसलिए इस प्रथा को स्वीकार नहीं किया कि प्रभुपाद ने अपना स्वरूप भी किसको नहीं बताया है, वो जानते कि मैं बता दूंगा बाद में सब स्पेकुलेशन करके सब एक एक दूसरे को बताते रहेगा कुछ है, कोई स्पेकुलेशन करने कोई आश्चर्य बात है? अब राधा कुंड में जाओगे तो काल की काल आपको स्वरूप पता चल जाए, आप कौन हो? तो चीटर है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि संसार सारा दुनिया चीटिंग चीटर और चीटेड में भरे हुए हैं। यहाँ पर दो ही प्रकार के लोग हैं, चीटिंग का जो चीटिंग करते हैं और चीटिंग जो चीटेड होते हैं, दो प्रकार के लोग हैं। इसलिए हमें सेफ है कि किसके ऊपर निर्भर करें? कृष्ण के ऊपर। हम साधन करते रहे, साधन करते करते जब इसलिए कहते कि समाधि के स्तर पर जब आता है साधक तो पता लगता है वो कौन है, ये इसके क्या स्वरूप है, इसके नित्य स्वरूप क्या है, और उसी स्तर पर फिर उसको इसी को कहते हैं प्रेम, तभी वो प्रेम प्राप्त कर ले। अन्य स्तर पर हम देखें कि स्तर में जाता है कौन सा, आदव श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति ऐसी निष्ठा रुचि आसक्ति भाव के स्तर तक भी अनर्थ रहते हैं। हर स्तर में कुछ अनर्थ रहते हैं, अनर्थ है जब निष्ठा के स्तर पर 50% अनर्थ चले जाते हैं, भजन क्रिया से 25% जाते हैं, एकादश वर्तनी जो निष्ठा के स्तर पर आता है तो उसके 50% अनर्थ पर चले जाते हैं और वहीं से आगे रुचि उत्पन्न होता है। भाव के स्तर पर भी कुछ अनर्थ रहते हैं, उस समय कभी कभी भगवान के स्मरण होता है, कभी कभी भगवान निर्णाम के स्मरण आपके बारे में कुछ स्मरण हो जाता है, लेकिन फिर चले जाते भूल जाते, लेकिन समाधि के स्तर पर प्रेम के स्तर पर वो फिर समझ जाता है मैं कौन, उसके नित्य स्वभाव जागृत हो जाता है, किसी एक विशेष रस में किसी भगवान की सेवा करने की प्रेरणा उसके अंतकरण से उत्पन्न हो जाता है, उस तरफ उसके शरीर में अष्टसाथी के विकार प्रकट हो जाते, फिर नाचता गाता रोता है, स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हम सब भी बीमारी है, बद्ध जीव है और हमारे अभी अनर्थ ही सब निवृत्त नहीं हुए हैं, तो इसलिए हमें सावधानी से अभी श्रवण करें, यहीं से प्रारंभ करें। इसलिए भागवत कहे कि प्रारंभ से ही कहा गया धर्म समुष्ठिता पुंसा विश्वक्षेना कथा सुज न उत्पादय जदिरतिम श्रम वही केवल पृथा परिश्रम कर रहा। यदि कोई सब कुछ कर रहा है, अपने ऐसे जो कुछ दिया गया अन्य सब कर्तव्य सब कुछ ठीक से पालन करने पर भी यदि वो भागवत कथा को श्रवण नहीं कर रहा, भागवत नित्य श्रवण नहीं कर रहा, हरि कथा श्रवण नहीं कर रहा, तो वो जो कुछ कर रहा केवल क्या पृथा परिश्रम कर रहा है। देखो आए प्रारंभ यहीं से भक्ति होता श्रवण से और अटेंटिव हियरिंग, ये श्रवण से यहीं से यदि कमी रख देंगे फिर आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, तो ध्यान से श्रवण करना चाहिए। यहीं से हम प्रारंभ करें, फिर आस्ते 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 हम प्रोग्रेस करेंगे और फिर भगवान की धाम को प्राप्त कर लेंगे। प्रभुपाद कहते कि इसलिए इंद्रिय तृप्ति में समय को मत बिताओ, पहले अपने वो सच्चिदानंद स्वरूप को पहचानो और सच्चिदानंद भगवान की सेवा में आप नियोजित हो जाओ। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो दो तीन मिनट बचा है ना, प्रश्न क्वेश्चन किसके टाइम से क्लास? हाँ
थैंक यू महाराज। एक प्रश्न था, जैसे धृतराष्ट्र ने श्रवण के माध्यम से गीता संजय के माध्यम से गीता जो है उसका सुना था, गीता सुना था, बट उसके मन में तो कोई भाव या उस तरह से उत्पन्न नहीं हुआ कृष्ण जी के लिए, वो तो फिर युद्ध उधर से प्रारंभ हो गया, फिर चलता रहा युद्ध एंड तक, मतलब श्रवण तो उसने भी किया था और डायरेक्ट,
तो उसको सुनने का उद्देश्य क्या था?
वो जानना चाहता था कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है उस समय,
क्या उद्देश्य था धृतराष्ट्र का श्रवण करने का? गीता सुन रहा था, वो सुन रहा था कि मेरा लड़का का क्या हो रहा, दुर्योधन के पक्ष हमारा पक्ष जीत रहे कि नहीं, क्या हो रहा उसी को जानना चाहता था वो, वो भगवान को जानने के लिए समझने के लिए थोड़ी गीता सुन रहा था, कृष्ण को समझने के लिए गीता सुन रहा था नहीं, तो इसलिए इसी तरह श्रवण में कुछ श्रवण जैसे करोगे सही कोल में लगे ना, तो श्रवण कर रहा था अपने मैंने क्या हो रहा मेरे बेटे कैसे है ठीक है कि नहीं उसको जानने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए गीता थोड़ी जल्दी सुन रहे, तो आप जब वही श्रवण करोगे कृष्ण के लिए कृष्ण को समझने के लिए फिर उसकी फॉर्म मिलेगा, व्यक्ति क्या चाहता है भगवान भी देखते हैं ना क्या चाहता है, तो इसलिए गीता श्रवण कर रहा था लेकिन वो किस लिए श्रवण करता था, वही इनअटेंटिव होकर सुनते, वो केवल एक साइड सुनना चाहता था कि मेरे पुत्रों को क्या हो रहा उसी को जानना चाहता था, भगवान कौन है भगवान के जो उपदेश दे रहे इसको थोड़ी सुन रही है, उपदेश सुनने के लिए थोड़ी था उसके समय का है, भगवान के उपदेश को सुनने के लिए उसको समय नहीं था। ऐसे लोग को तो गाली खाएंगे तभी उत्तर देंगे, तो आके गाली के निकाला कौन, विदुर जी आके निकाले, विदुर जी आके डांटे बहुत डांटे इसको, कुत्ता कुत्ता बहुत कुछ कहे, कुत्ता की तरफ खाता है, समझ में नहीं आता। यही भीम तेरा सौ पुत्र को मारा एक एक करके, और वही भीम लाकर खाना देता तो उसी के हाथ से खाना खाता है, शर्म नहीं है तुझे, बहुत डांटे है। तो फिर वो रो के भागा है, फिर घर से निकला। इसमें ऐसे ही, इसलिए गीता जो सुनेगा ठीक से इसको फल मिलेगा ना। एक क्लास में सब बैठे हैं, सभी को एक जैसे फल नहीं मिलता है, कुछ जो अटेंटिव होकर सुना तो उसको कुछ फायदा होता है, जैसे ही सुना जैसे श्रवण किया है तो उसी आधार पर उसको फल प्राप्त होगा। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा सब्जेक्ट मैटर अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेरा प्रश्न ये कि ध्यान पूर्वक जब श्रवण होता है तो उसके कैसे पता लगेगा, उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं? ध्यान पूर्वक अगर श्रवण किया जा रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पता?
सिम्टम आपको ही पता लगेगा ना, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कि नहीं। ये अनर्थ जहाँ नहीं हो रहे तो ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहा है, अटेंटिव हियरिंग, आपके मन इधर उधर जा रहा है कि नहीं, नहीं जा रहेगा श्रवण के समय में। जैसे ये अनर्थ जो कहा गया कि मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, केवल कथा ही श्रवण में लगा रहना चाहिए, कहा गया तक लय, लय का अर्थ सो जाना, नहीं सोना, श्रवण कर रहे तो सोएगा नहीं, ये तो लक्षण है। जो सब सुन रहा था तो नींद कैसे आएगा, अटेंटिव बैठ के सुनेगा। और आप जानते कि अटेंटिव यदि बाहर उसे से बैठ के सुन रहे हो तो अपना आपकी मन कथा में है कि और कहीं घूम रहा है, है? श्रवण के समय में और कुछ नहीं, चिंतन नहीं करना चाहिए, सिर्फ अटेंटिवली वही भागवत को ही श्रवण करना। बाहरी कृष्ण मंत्र जप रहे हैं तो अटेंटिवली उसी को सुने, इसको उसी मंत्र को सुनते रहे। तो माया तो अपना टेक्निक भी एक एक आविष्कार करते रहती है। अभी पहले 10 साल पहले मोबाइल नहीं थे, अब मोबाइल आ गए, जॉब करते रहेंगे लेकिन सामने मोबाइल रहेगा, हैं? तो फिर क्या हो, कहीं से फोन आ गया, फोन आ गया तो बस भागे तुरंत जब माला वहीं रख, इमरजेंसी तो हुई, हैं? बस कैसे होगा, अटेंटिव से जो सुनेगा तो अटेंटिव हियरिंग सुनना है तो मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अटेंटिव, इसको नींद नहीं आना चाहिए। यदि श्रवण कर रहा था इसको याद होना चाहिए। फिर आगे श्रवण करते पर श्रवण कीर्तन करने के समय में क्रोधित होना चाहिए, किसी के प्रति क्रोधित नहीं होना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए। अंत में श्रवण कीर्तन कर फिर अन्य कुछ दूसरे भौतिक चीजों को आश्रम मैंने प्राप्त करने के लिए बाबू उसके चिंतन में फिर मती नहीं जाना चाहिए, है? कुछ देखना चाहिए, अपने आप को आप पहचान सकते हो, आप जान सकते हो मेरा कैसे हो रहा है, सब श्रवण कीर्तन कैसे हो रहा है, आप सब स्वयं जान सकते। यहीं से यदि हम कमी रख देंगे शुरू से ही, श्रवण से ही, श्रवण कीर्तन से ही कमी रह जाएगी तो आगे कहाँ बढ़ेंगे, है? पहले इसे हम ठीक से इसको सुधारेंगे, अटेंटिव हियरिंग से सावधानी से श्रवण करेंगे, फिर आस्ते आस्ते भगवान के स्मरण स्तर पर आएंगे। स्मरण कभी कभी होता कभी नहीं होता, फिर ऐसे ही करके हम जब समाधि स्तर पर आएंगे तो लगता बहुत आसान लेकिन फिर भी थोड़ा कठिन है इसको, लेकिन जो सीरियस है तो वो प्रोग्रेस कर सकता जल्दी है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? प्रचार के आचार्य हरे कृष्ण ग्रंथराशिम भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गीता गुरु नंदी।